نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روزے جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں. آمین. یہ تھی سورۃ الفاتحہ. عبادت کی روح شکر ہے اور سورۃ فاتحہ ہمیں شکر سکھاتی ہے. اور جب عبادت استعانت میں بدلتی ہے، یعنی اللہ سے مدد مانگنے میں، تو یہ بندے کا رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ کہتے ہی انسان بہت ساری منزلیں طے کر لیتا ہے اور اس کا تعلق اپنے رب سے جڑنے لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں. آپ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ جس کو آپ جانتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ آپ کی زبان میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تو کوئی بیگانہ نہیں، تو میرا اپنا ہے. اور جب آپ رب العالمین کہتے ہیں تو آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب جو سب کا رب ہے، میں بھی اسی کی ذمہ داری ہوں. یہ کہتے ہی ایک دم آپ کے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں. آپ اپنے تمام تفکرات اور تمام فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب ہے وہ میری ٹیک کیئر نہ کرے. پھر آپ کو اپنی دنیا کی پریشانیاں پریشان نہیں کرتی. پھر آپ کو اپنے کام اپنے نہیں لگتے. پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کام کوئی ہے جو کر رہا ہے. الحمدللہ کہتے ہی زندگی شکر میں ڈرتی ہے، اور شکر شکر ہے، اور شکر زندگی کو میٹھا کرتی ہے، جیسے چائے میٹھی ہو جاتی ہے شوگر سے. جب زندگی میں شکر آئے گا تو اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی. اور اس محبت کو جتنا زیادہ اپنے دل میں پائیں گے، اتنا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے گا. قرآن پاک کا آغاز کسی حکم سے نہیں ہو رہا، اللہ کی تعریفوں سے ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ کے تین حصے ہیں. پہلی تین آیات میں رب کا تعارف ہے، اور تعارف کس سے ہوا؟ الرحمن الرحیم. یہ نہیں کہا الجبار والقہار. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے. تو لہٰذا جب اللہ کا تعارف اپنے بچوں کو دیں، کسی سے بھی بات کریں کہ رب کون ہے، تو کہیں پیار کرنے والا. رب کون ہے؟ جس کا شعار کیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ. میرا اور آپ کا تعلق کسی ظالم اور جابر حکمران سے نہیں ہے، حالانکہ وہ مالک یوم الدین ہے. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہمارے سامنے کتنی ہیں. تو ہم نے اس سال کے دورے قرآن سے تمام وہ چیزیں چن چن کے نکال دینی اپنی زندگی سے، اپنی عادات سے، کہ جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں. ہم نے امت وسط کا ایک فعال شخص بننا ہے، اور امت وسط کے لیے پہلا کام جو کرنے کا سورۃ فاتحہ میں آ گیا، الحمدللہ رب العالمین. اپنی تعریفیں نہ کرو، اللہ کے دشمنوں کی تعریفیں نہ کرو. تمہارا دل مرعوب نہ ہو دوسروں سے، تمہارا دل مرعوب ہو الرحمن الرحیم سے. اور اللہ کا رحم جس کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں چینجز آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے نیگیٹو سوچنے کی، اور عادت ہوتی بھی اس طرح ایک دن میں نہیں ہے. ہم نے اتنی باتیں سنی اپنے خلاف، اتنے لوگ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی سوچنے لگے کہ ہاں مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہوں گے، مسلمانوں کی زندگی تو پتہ نہیں ایسی ہوگی، اور ان کے اندر تو پتہ نہیں کوئی خوبی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم نے وی آر سوری ٹو بی مسلم سے ہٹ کر وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. جب ایک انسان کی نظریں رب پہ لگتی ہیں نا، تو اس کو دنیا کے سب انسان مہرے لگتے ہیں. जिनका असल कंट्रोल रब के हाथ में। अल्लाह से ताल्लुक वो पहली चीज है जो एक कौम को उम्मत बनाता है। हम सब भी एक कौम थे कब, नबी सल्लम के दुनिया में आने से पहले। कुरैश कबाइल में बटी हुई थी, उनकी जिंदगी छोटी छोटी बातों के गम में जीने का नाम थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को उम्मत बनाया। आप सोचेंगे कौम और उम्मत का फर्क क्या है, तो याद रखिए कि लफ्ज उम्मत एक ऐसा लफ्ज है कि जो इंसान को हम ख्याल बनाता है। अरबी जुबान में अगर आप बहुत सारी तारीफें ना भी पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ एक दफ़ा रुक के पूछती हूँ इसके बगैर, पीछे सब साथियों को इसके पास ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। जब तक स्टैंड दूसरा नहीं आता हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि वरना वो फिर आर्टिफिशियल सा लगता है मुझे। फर्स्ट सवाल पैदा होता है कि उम्मत क्या है। उम्मत कहते हैं लाइक माइंडेड लोगों को, हम ख्याल लोग जिनकी जिंदगी का जीना मरना सोच महवर एक हो। अब आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को आप एक कौम बनाना चाहते हैं कि उम्मत? कौम तो हम नहीं बन सकते, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम बांग्लादेशी हैं, हम सबका कल्चर फर्क है, इट और नो प्रॉब्लम एट ऑल। अल्लाह ताला ने खुद कहा सूरह हुजरात में, हम पढ़ेंगे कि तुम्हें कबाइल और मुख्तलिफ चीज़ों में बांटा ताकि तारुफ हासिल हो। अल्लाह ने हमें जिस चीज़ की दावत दी है वो उम्मत बनना है, और उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत बनना है। ये तो दूसरे पारे में देखेंगे, लेकिन लफ्ज उम्मत पे थोड़ी सी बात करेंगे हम इंशाल्लाह इसी पारे में आगे जाकर। वहाँ आपको कुछ आयात नोट कराऊंगी, इस सिलसिले में हमारा एक और ये भी काम होगा, हर पारे में से उम्मत के रेलेवेंट जितने भी लफ्ज हैं उसको हम एक जगह देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो हम वहाँ देखेंगे जहाँ आएगा। इस वक्त बात रखिए अपने रब की, हम अपने रब से प्यार करें, उसकी बात को माने, तो अल्लाह ताला की तरफ चलने का पहला सफर शुरू होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि हम इसमें कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। अब रब बदले के दिन का मालिक है तो इसमें खुशी की क्या बात है? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो खुद हमारा मालिक है। आपका अपना उस्ताद जब आपके पेपर चेक करता है तो नंबर बहुत आते हैं, गैर करे तो उसको तो आपकी स्किल्स का पता भी नहीं है। शुक्र कीजिए कि क्यामत के दिन इंसाफ की तराजू अल्लाह के हाथ में होगी। अगर अल्लाह मुझे और आपको किसी गैर और बेगाने के बस डाल देता ना, जाओ इसके पेपर चेक कर लो, तो क्यामत का दिन यौमत तगाबन बन जाता हम सबके लिए। अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट निकलते हमारी जिंदगियों में। फिर आप देखिए कि हम अपनी बात करते हैं अल्लाह की तारीफें करके, मालिक यौमिद्दीन, अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये असल में मैं लिखिए, पहली तीन आयतें रब, और मैं क्या हूं, एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं। गोया कि आप कह लीजिए खालिक की पहचान हो गई, अल्लाह रहमान रहीम मालिक रब्बिल आलमीन के नाम पर। मैं कौन हूं, बंदी, और बंदगी क्या होती है, बंदगी में असल हुसन है। उलामा इकबाल ने भी कहा ना कि बंदगी दे के ना लूं शाने खुदाबंदी। बंदगी में हुर्रियत है, जब हम एक रब के बंदे बन जाते हैं ना तो अल्लाह ताला सारी दुनिया को हमारा बना देता है। आज मुसलमान दुनिया में अगर उभरना चाहते हैं तो उनको रब का बंदा बनना पड़ेगा। ये ऐसी है कि जैसे शादी के बाद मर्द की जो दौलत, गाड़ियां, घर, बंगला, चाबियां सब बीवी को मिल जाती हैं, हालांकि उसने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की होती, लेकिन अल्लाह उसको दे देता है मर्द के नाते से। अब एक मर्द की बीवी बनकर एक औरत इतनी अमीर हो गई, तो जब एक रब जो मालिकुल मुल्क है उसके आप बंदे ही बन जाएं, गुलामी में आ गए, तो आपका क्या हाल होगा? बड़े लोगों के जो गुलाम होते हैं, या गुलाम तो आजकल है नहीं इसलिए सर्वेंट कह दूं तो बेहतर है, अमीर लोगों के और बड़े बड़े मशहूर लोगों के जो सर्वेंट्स होते हैं ना, वो आम लोगों से भी अच्छे ही होते हैं, कि कोई बात नहीं गुलाम तो हैं लेकिन हैं तो फिरौन के। तो याद रखिए कि अल्लाह सुभान व तआला हमें अपनी गुलामी में लेकर बंदों की गुलामी से आज़ाद करता है। इंसान की तबीयत में यह है कि वो किसी का बंदा बने। जैसे औरतों की जिंदगी में, औरतों की तबीयत में एक रंग है, और वो क्या चाहती हैं कि कोई हो जो उनकी टेक केयर करे, केयर करे, बाहर के काम करे। औरत अपनी तबीयत के अतबार से बहुत कमज़ोर है। ये अलग बात है कि आप उसको आयरन वूमेन बनाने की कोशिशों में वूमेन भी नहीं छोड़ते, आयरन ही बन जाती है बेचारी। अल्लाह के साथ ताल्लुक एक कमजोर बंदे को बहुत ताकतवर कर देता है। और आप देखिए, या का नाबुदू, हम सब आपकी इबादत करते हैं। और इबादत क्या है? हम आपके आगे झुकते भी हैं, सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं। लेकिन इबादत में दूसरा एक और मानी भी होता है, इतात, सबमिशन। पहला क्या है? वर्शिप। दूसरा क्या है? सबमिशन। और तीसरा क्या है? स्लेवरी। ये तीन लफ्ज अपने दिल पे लिख लें, या आज के आपके जेम बोर्ड की एक चीज होगी। इबादत के तीन रंग क्या है? वर्शिप रिचुअल्स हम सब करते हैं दिन रात, सुबह शाम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नो प्रॉब्लम, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये तो एक रंग है, दिस इज द वन थर्ड ऑफ इबादा। लेकिन इसकी सेकेंड फेज क्या आती है? कि हम खुद को अल्लाह के हुक्मों के आगे झुका दें। किसी ने पूछा कि मोमिन और मुस्लिम का क्या फर्क है, किसी ने कुछ कहा, इतनी मुश्किल तारीफें थी। एक सीधा साधा देहाती था, कहते जरा इस बुजुर्ग से पूछते कि भाई मुस्लिम और मोमिन का फर्क क्या है। कहा बाबा जी मुस्लिम कौन होता है? कहने लगा जो रब को माने। कहा अच्छा ये बताइए मोमिन कौन होता है? कहा जो रब की माने। बात वाजे हुई, रब को भी मानना है तो रब की भी मानना है। नमाज जिस काम का सबक देती है वो करना है। जब अल्लाह किसी बात का हुक्म देगा तो उसको मानेंगे, और जिसे रोकेगा तो रुक जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी स्टेज क्या होती है? कि हुक्म भी मान लिया तो आप अकड़ जाए? नहीं, आप स्लेवरी, सब कुछ करके मान के भी माफिया मांगनी है कि अल्लाह कर नहीं सकी, हक अदा नहीं कर सकी। अब आप खुद से जरा, मैं भी पूछती हूं, आप भी, क्या मैं अल्लाह की बंदी हूं? क्या मैं इबादत करती हूं? आप कहेंगे नमाज, रोजा, हज, माशाल्लाह, वन थर्ड पे आप अपने आप को पूरे मार्क्स दे दीजिए, 33.33। लेकिन इतात वाला पेपर किधर है? इसमें कितने नंबर है? तीन हिस्सों में कर लीजिए लफ्ज बंदगी को, 33.33 से करके प्लस 100 कर लें सबको। तीनों को चेक करेंगे आज जाकर हम, मेरी नमाजों, रोजों, हज का, तमल रिचुअल्स का क्या हाल है। जितने नंबर आप खुद को देंगे वो ठीक होंगे। आप मुझे देंगे ना तो गलती खाएंगे, और मैं भी आपको दूंगी तो गलत करूंगी। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, हर बंदा खुद को जानता है। आप भी खुद को जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और आप अपने हालात जानती हैं, मैं अपने जानती हूँ, कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई कहाँ हुआ। फिर 33.33 नंबर आप दें खुद को इताद के, अल्लाह की बात मानती, नमाज में कहती हूँ कि या का नाबुद व या का नस्तईन, और आगे ही मांगती हूँ दिन सिरातल मुस्तकीम, तो क्या हिदायत को पाने का जब मौका आता है तो कबूल करती हूँ या पीछे हो जाती हूँ? बस हम अपने अमल के नंबर 33 में से दे लें जितने देने हैं। ये भी कर लिया माशाल्लाह, थोड़ी आवाजें आ रही है। अब अगले दर्जे पे खुद को लीजिए, क्या नेकियों का गरूर तो नहीं आ गया? नमाजों का बहुत रोब तो नहीं जमाती? बस दफा दीन पे आने के बाद इंसान अमल में भी पक्का होता है, इल्म में भी बहुत पक्का हो जाता है, लेकिन टोन बड़ी सख्त हो जाती है। किसी को नजर में नहीं रखते, किसी के बारे में कुछ कहना, सुनना, सोचना गवारा ही नहीं करते। हम नेक, हम हाफिज, हम आलिम, हम हमारे बाप दादा इतने बड़े बड़े आलिम थे भाई, होंगे, उनका अमल उनके साथ, आपका आपके साथ है, लेकिन आजजी लेकर आनी है। आज से ही खुद को कह ले, बंदा मोमिन का हाल क्या होता है? कि वो आजिज होता है। कैसा आजिज? कि जिसको लोग तरने वाला बनाए? नहीं, देखिए आप इसको यूं समझिए कि ब्रेड की मिसाल दूंगी आपको, खाने की मिसालें बड़ी मिलेंगी। आज आपको रेसिपी भी एक मिलनी है अभी ब्रेक के बाद, अभी 15 मिनट बाद ब्रेक है, ठीक है। अब आप देखिए कि जब ये सारे मामले होते हैं तो कैसा होता है? रोटी की मिसाल दूंगी। आप कहते हैं किसी के हाथ की रोटी बड़ी अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती। अच्छी ब्रेड या अच्छी रोटी की मिसाल की पहचान क्या है? अच्छी ब्रेड कौन सी होती है? मेरी नजर में ऊपर से बड़ी क्रिस्प हो, खूबसूरत देख रहे हैं आप, अच्छा सा माशाल्लाह सिकी हुई है, लेकिन जब आप उसको तोड़ें तो ऐसे रुई की तरफ नरम रोटी, ऐसे ही ना। और इसका बरक्स देखे, ऊपर से रोटी कच्ची लग रही है अभी, लेकिन हाथ में डाली तो वो हाथ क्या, दांत ही टूटने का डर है। ठंडी आग पर, ठंडे तवे पर रोटी बनाएंगे तो ऐसी होगी ना। अब क्या हुआ कि देखने में तो कच्ची लगी, लेकिन हाथ लगाया तो सख्त है। बेहतरीन रोटी जैसे होती है ना, मोमिन भी ऐसा होता है। ऊपर से आप दूर से उसको देखते हैं तो आपको बड़ा फॉर्म लगता है, आपके जिन में उसकी बड़ी रौनत होती है, वाह क्या सख्त है। और अल्लाह के नबी ऐसे ही थे। सहाबा किराम कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते थे तो हम आपको बड़ा सख्त समझते थे, हमें खौफ आता था, लोग आपके सामने नहीं बैठ सकते थे, आपसे बात नहीं करते थे, लेकिन जब आपसे वास्ता पड़ता, जब आपके साथ जिंदगी के वन टू वन मामला होते, तो आप इतने सॉफ्ट थे। तो ये जो अंदर की सॉफ्टनेट कब आती है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और हम देखिए यहाँ अस्तईन नहीं कह रहे, नस्तईन और नअबुदु कह रहे हैं, ये भी एक खूबसूरत नुकता है, इज्तमाईयत की बात है। एक ये था कि मैं अल्लाह आपकी, अल्लाह मैं आपकी बंदी हूँ, इय्याक नअबुदु की जगह आप क्या कहते, इय्याक आबुदु कह सकते थे ना, वाहिद जमा का फर्क है सिर्फ, सिंगुलर और प्लूरल। अल्लाह मैं आपकी बंदी हूँ, आप ये नहीं कह रही, आप कह रही या का नाबुदु, अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं। एक तो इसमें कम्युनिटी दिख रही है, उम्मत। मुसलमान अकेला नहीं होता, मुसलमान हमेशा दूसरों के साथ होता है। जैसे एक जिस्म है ना, इसके मुख्तलिफ हिस्से मिलते हैं तो वो जिस्म बनता है, यही हालात वहां होते हैं। एक तो इसका ये मानिए कि सारा माहौल ही इस्लाम का बना दो। सूरत फातिहा हम आपको उम्मत बनना सिखाती है। और दूसरा इसका मानी क्या है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा सारा जिस्म तेरा बंदा। अब आप इसमें अपने ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से ले आइए, अल्लाह मेरा जिस्म, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान, मेरे हाथ, मेरा दिल, दमाग, सब कुछ तेरे बंदे हैं। समझ आ गई बात? और याद रखिए, जिस्म के हर उज्व की बंदगी फर्क होती है। थोड़ा सा अपना जायजा ले लें, तदब्बुर भी तो करना है, लिखिएगा चंद सवाल। मेरी आंखें किसकी बंदगी करती हैं? क्या मेरे कान रब के बंदे हैं? मैं अपनी जुबान को कितने नंबर दूंगी बंदगी के? और दिल, उसकी तबाहियों को सामने रख के सोचूं, क्या वाकई मेरा दिल अल्लाह का बंदा है? जब दिल स्याह हो जाता है ना, तो पीछे कुछ भी नहीं रहता। तो जब आप और मैं अल्लाह के सामने आजजी का इजहार करते हैं कि अल्लाह मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो मेरी मदद कर, हम सब मिलके तेरी मदद के मोहताज हैं, तो कमजोरी की इंतहा है कि अल्लाह तो मेरी मदद कर दे। और जब आप अल्लाह के बंदे बने, तो साथ ही फिर एक दुआ निकली, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहली तीन आयतों में रब, फिर चौथी आयत में आप। अब जब आप इतने बड़े के सामने खड़े हुए, तो मांगने को तो बहुत कुछ था। बादशाह उसके पास जाए तो जो मर्जी मांग ले, लेकिन मांगने वाले ने दुनिया की सबसे कीमती चीज मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे गाइड कर दे, अल्लाह प्लीज गाइड मी, मैं थक गई, अल्लाह मैं थक गई हूं, बहुत गुनाह किए, अल्लाह बस मैं अब तेरी बनना चाहती हूँ। मैंने लोगों को खुश करना चाहा, कोई आज तक खुश ही नहीं हुआ। मैंने लोगों को ये किया वो किया, इतना उनकी नखरे देखे, नाज देखे, कोई खुश नहीं हुआ। मैं उनकी मर्जी की बन गई, मैंने अपना रंग ढंग सब बदल दिया, मैंने अपनी जात फना कर दी, कोई खुश ही नहीं होता। अल्लाह अब तो मुझे अपना बना ले। देखिए, इंसान गुनाह करके भी थक ही जाता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग कहते हैं शायद नेकियाँ मुश्किल होती हैं। नेकियाँ शुरू में मुश्किल होती हैं, बाद में तो उसकी इतनी आदत पड़ जाती है, उसके बगैर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। गुनाह शुरू में मजा देते हैं, बाद में मजा नहीं देते। इमेजिन करें अपनी जिंदगी का कोई पुराना, अल्लाह माफ करे गुनाह, पहली दफा किया, वाह हा दिस दैट, फिर दूसरा घूंट कैसा होता है, फिर तीसरा कैसा है। क्या आपने वो लोग नहीं देखे जो एडिक्टेड है? वो बेचारे कहते हैं किसी तरह हाथ जोड़ते हैं, हमारी ये मुसीबत छुड़वा दो, क्रेव होने लगती है, गुनाहों का नशा होता है। जबकि इसके बरक्स नेकी, नेकी शुरू में मुश्किल लगती है, किसी के कहने पर करनी पड़ती है। आप और मैं इन आयतों पे वो पांचवा अमल करना है कि आप किसी की नेकी का जरिया बन जाएं। कल सिर्फ किसी एक बंदी को अपने साथ ले आए, ये इस साल का गोल है। हर दिन आपने और मैंने किसी एक सिस्टर से राब्ता करके उनको अपने साथ लाना, क्यों? कि जब आप किसी की हिदायत का जरिया बनती है ना, तो आपकी अपनी हिदायत जम जाती है। आप उधर अकेली आ रही है ना, तो आपको आना मुश्किल लगेगा कल। और अगर आपने आज किसी को साथ तैयार कर लिया, कल सुबह आप अभी नींद में थे और हेलो कहा और उधर से आवाज आई, जी कब निकल रही है, मैं रेडी हूं, तो आपकी भी आंखें पटपट खुलेंगी, आप कहेंगे बस 15 मिनट में आई मैं। अपने साथ किसी को जोड़ लें, यही है तवासी बिल हक की व तवासु बिस सब्र। तो लिहाजा हिदायत के सफर पे अकेले अच्छा नहीं जाता। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले जाइए, और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ दोस्तों को ले लें। आप देखिए, जब हमारे प्यारे हमारे साथ होते हैं ना, तो हम उनसे बातें करते 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 चलते जाते हैं, कहती इतना चल लिया पता ही नहीं चला, और अकेले वॉक करना मेरा लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, सिवाय ये कि फिर आप कानों में हेडफोन लगा के कुछ रिकॉर्डिंग सुन लें और जुबान पे कुछ जिक्र रखें तो फिर आप चल लेते हैं। तो हिदायत का सफर तन्हा तय नहीं करना, प्यारों को साथ लेकर चलना है। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किए। इनाम वाले लोग कौन है? आप अगर देखें ना तो सूरत फातिहा पढ़ते वक्त आपको खुद भी फील हो रहा होगा जो बात मैं फील कर रही हूँ, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अल्लाह ताला से बातें कर रही हूँ। और हकीकत है, हदीस भी है कि ये सूरत फातिहा बंदे और रब के बीच में कलाम है, बंदा कुछ कहता है रब कुछ कहता है। अब जब आप कहीं भी जाते हैं तो रास्ते में माइलस्टोन आते हैं, जैसे आप सब यहाँ आए तो रास्ते में कई साइंस आए होंगे ना, फिर ही आप इस जगह तक पहुंचे। इसी तरह जब हम हिदायत के रास्ते पे जाते हैं ना तो ये एक मोटरवे है, हाईवे है, इस पर भी मुख्तलिफ निशान लगे हुए हैं, उनको देखते जाओ, उनके अमल को परखते जाओ और हिदायत के रास्ते पे चलते जाओ। पहला माइल स्टोन हजरत नूह का, फिर इब्राहिम, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबा कराम, फिर ताबईन, तबा ताबईन, आइमा कराम, मुहद्दिसीन, नेक लोगों के अमल को देखते जाओ और वही करते जाओ जो वो करते थे। नोट कीजिएगा नुक्ता, सिरात अल्लज़ीन अनअमता, रास्ता बताओ उनका जिन पर तूने इनाम किए। ये नहीं कहा कि अल्लाह वो नेक लोगों के नाम बता दें ताकि हम उनका पल्लू पकड़ लें और हम भी उनके साथ जन्नत में पहुंच जाएं, ये नहीं हो सकता। आज हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कहते हैं फलां बड़ा नेक है उससे जाके दुआ करा लो, जाके उनको खाना खिलाओ और उन्हें कहना जरा दुआ में याद रखना, और जरा उनको बुलाओ और बच्चे की शादी है जरा आके वो दुआ कर दें, अच्छा कोई फौत हो गया आके जरा वो दुआ कर जाए, निकाह पढ़ा दें, जनाजा पढ़ा दें। नहीं, सिरात अल्लज़ीन अनअमत, और जब आप सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं तो फिर आपकी मुख्तलिफ स्पीड्स हैं। आप जिस रोड से गुजर के आए यकीनन उसमें दो या तीन ट्रैक तो थे ना, राइट लेफ्ट और मिडल वाला। सबसे पहला रोड ट्रैक कौन सा होता है जिसमें निस्बतन स्लो गाड़ियां चलती हैं ना, मिडल में मिडल स्पीड, और आखिरी में कितनी होती है, तेज स्पीड। आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट लेन में रहना चाहते हैं, सेकंड में या थर्ड में। जो थर्ड में होगा ना उसको सबसे आगे होना पड़ेगा। नोट करिए, जब पिछली गाड़ी आपसे तेज चलना चाहती तो आप आखिर क्या करते हैं, उसको रास्ता देते हैं, भाई तुम मेरी जान छोड़ो तुम जाओ आगे। अगर आप तेज चलेंगे ना हिदायत के सफर पे तो आप लीडर हैं। ये है उम्मत वसत, ये हैं पायनियर्स, यही है जिसको अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ऑनर दी कि इब्राहिम एक उम्मत थे। जो हिदायत के सफर पे तेज चलते हैं वो लीड करते हैं। अच्छा, इसके बरक्स आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं तो आप सबसे पीछे रहेंगे। दुनिया में भी यही है, जो लोग अपनी स्किल्स को यूज करके दुनिया में हलचल मचाते हैं वो लीडर बन जाते हैं। जैसे आज वेस्ट को देखिए, उन्होंने अगर आज तरक्की की है तो कोई बातों के जोर पे नहीं की, कामों के जोर पे की है, रिसर्च पे की है। जो काम लोगों ने मेहनत, रिसर्च और अच्छे कवानीन और डिसिप्लिन के साथ किए, आप मैं कहेंगे सिर्फ हमें उम्मत वसत का नाम रखने से मिल जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह का कानून इस दुनिया में, नोट कीजिएगा लफ्ज़ दुनिया में, मुसलमान और काफिर के लिए सेम है। मुसलमान अच्छा काम करेगा, दुनिया में मेहनत करेगा, तरक्की करेगा, काफिर करेगा उसको भी तरक्की मिलेगी। और अगर मुसलमान हट हराम होके बैठ जाए और उसकी जिंदगी का कोई बड़ा गोल ना रहे, वक्त का बोपा बन ना रहे, सोना जागना उसका बहुत बेकार हो, खाना पीना उसका गलत हो, तो फिर याद रखिए मुसलमान पीछे हो गए। नबी सल्लम से लेकर 1000 साल तक मुस्लिम्स पायनियर्स थे, क्योंकि उनकी उनके अंदर खूबियां थी। जब हम सुस्त हुए, अल्लाह ने वो सब इल्म के खजाने हमारे हाथों से लेकर वेस्ट को दे दिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम से वो कुछ सीख लिया जो हम नहीं ले सके। तो सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम कहकर यहां हमने अपने आप लिए एक दुआ कर दी कि अल्लाह दिन ब दिन मेरा तेरे साथ ताल्लुक भी अच्छा हो और दुनिया में भी मैं अच्छे तरीके से रहूं। और आप देखिए कि जब आप और मैं सिरात मुस्तकीम पे आ गए तो कभी तो पहुंचेंगे ही ना। असल मसला होता है घर से निकलने का, ऐसे ही है ना, जो डिलेइंग हो रही होती है ना वो हमारी घर से निकलते के वक्त होती है। तो जब हम घर से निकल आए तो भी नहीं तो 10 मिनट बाद तो 15 मिनट बाद पहुंच ही जाएंगे ना। यही है सिरात मुस्तकीम, अभी चले नहीं तो चल पड़ो, क्योंकि नबियों ने भी यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। तो बाज लोग आपको कह सकते हैं अच्छा जी सीधे रास्ते पे वो नहीं थे तो मांगे, नहीं, इसके सफर के मरहले हैं। अभी रास्ता नहीं पता तो रास्ता बता दे, बता दिया तो अब चलना तो चलने की तौफीक दे। तो माशाल्लाह चल तो रहे हैं कई साल से, तो अल्लाह अब इस पे इस्तकामत दे, इस्तकामत अभी तक है तो अल्लाह इसी पे मेरा खात्मा कर दे। बात समझ है? एक सूरत फातिहा है, इमाम काबा भी वही पढ़ते हैं, और हो सकता है शराब के नशे से फारिग होकर फजर पढ़ने वाला भी वही सूरत फातिहा पढ़ रहा है। सब की इहदिना सिरातल मुस्तकीम फर्क है। हमारे इस थीम के साथ इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें क्या दे रही है? हमें दे रही है कि अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने का वो तरीका सिखा कि हम इस दुनिया में कोने कोने पे मुसलमान छा जाएं और दुनिया को हमारी जरूरत महसूस हो। हम अपने बच्चे वैसे रेस करें जैसे रेस करने चाहिए। अल्लाह हम ऐसे अपने कारोबार करें, हम दुनिया की दौड़ में इस तरह भागें कि जिस तरह हमें भागना है, हम तुझे नाराज करके पीछे ना हो। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, जब इन शुक्र गुजारियों के साथ आप काम करेंगे, अल्लाह की जात आपको रास्ता दिखाएगी। हिदायत रोशनी है, और रोशनी आती है ना तो अंधेरे छटते हैं। आज जो लोग बगैर हिदायत के या किताब हिदायत के बगैर जी रहे हैं ना, वो अंधेरों में जी रहे हैं। आपकी जिंदगी में ये एक हल्का सा एक चिराग जला सूरत फातिहा का भी। कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा, मैं उसको सूरत फातिहा से रिलेट करती हूँ। घर की विंडो से बाहर देख रही थी, मगरिब की नमाज के बाद का वक्त था, यानी मलगजा सा था, तो पीछे मैंने जुगनू देखे बिल्कुल विंडो के पास नीचे। ऐसे लग रहा था जैसे टुमटुमाते हुए छोटे छोटे दिए। तो मुझे अल्लामा इकबाल की पोएम भी याद आ गई, जुगनू की कहानी है ना, कभी मौका मिला तो आपको सुना। तो मेरा दिल भर आया, मैंने कहा अल्लाह ताला हमें आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा के जुगनू ही बना दे। हम नहीं दावा करते कि हमारी इन कोशिशों से कोई बहुत कुछ इस्लाम फैल रहा है या फैलेगा या बहुत लोगों को फायदा होगा, लेकिन अल्लाह हम लोगों को रास्ता तो दिखा सकें कि असल सच्ची खुशी किधर है। और जितनी सच्ची खुशी आती है ना, उतना इंसान दूसरों के लिए तड़पता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमें हिदायत दे दे, और उसके लिए ये रमज़ान मेरे और आपके पास एक मेहमान है। और रमज़ान एक ऐसा खूबसूरत महीना है कि जिसका एक एक कतरा निचोड़ना है। अगर इस रमज़ान में भी माफ़ी ना मिली तो क्या होगा, और अगर अब भी अल्लाह राजी ना हुआ तो क्या होगा? क्योंकि रमज़ान का के शबनम का एक कतरा आम दिनों के टनों पानी से भारी होता है। दिल खुले होते हैं, शैतान जकड़े हुए हैं, रास्ते खुले हुए हैं, और आप सब शैतान से बच बचा कर अल्लाह को कहते, अल्लाह मैं तेरे पास आ गई, मुझे पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जितना शुक्र अदा करेंगे आपको फायदा होगा। इमेजिन तो करें ना, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, अल्लाह का दरबार लगा हुआ है, एक तरफ अनमत अलैहिम एक तरफ मखदूब इन अलैहिम। मखदूब वो हैं जिन्होंने जानबूझ के अमल ना किया, और दुआलीन को है जो सिर्फ इस खौफ से नहीं पढ़ते कि अमल करना पड़ेगा। आप और मैं उसके बीच में है कि अल्लाह मैं बीच में आ गई। तो शुक्र के साथ पैदा करें अपने अंदर। हम तिलावत सुनते हैं एक बार इन आयतों की, फिर हम एक दुआ करेंगे शुक्र के नाते से इंशाअल्लाह ताला। अब इस तिलावत को सुनते वक्त खुद से पूछिए, हर उस नमाज में जो सूरत फातिहा पढ़ती हूँ, क्या यही सूरत फातिहा है? और क्या मेरा रब से ताल्लुक जुड़ता है या रह जाते बस पढ़ के आ जाती हूँ? जी, इस वक्त तदब्बुर कर लें आप लोग। आप देखिए कि एक कोई भी तो जहन्नम की बात नहीं थी इस सूरत में, क्योंकि अमूमन हमारे ख्याल में जहन्नम की आयतों पे लोग रोते हैं ना, तो ये जहन्नम पे तो नहीं रो रहे थे, है ही कोई बात नहीं। अल्लाह ने सूरह फातिहा में कोई नेगेटिव बात नहीं की, ये सिखा रहा है इस्लाम। मुस्लिम का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो गुनाह भी करते हुए ये सोच रहा होता है कि ये मेरा आखिरी गुनाह है, और जब वो नेकियां करता है ना तो वो उस वक्त ये सोच रहा होता है कि मैंने इसके बाद अभी और बहुत सारी नेकियां करनी है। अब इसके बाद ये जो वक्त है ना हमारा, ये खुद एहतसाबी का। मैं बिल्कुल खुद से बातें करने के दौरान के तरीके से आपको अल्लाह से बात करना सिखाऊंगी। यहाँ अगर सबके सामने मुमकिन ना हो तो आप बाद में घर में जाके ये एक्टिविटी करें, थोड़ी सी लाइट कम कर दें, अतीक ये लाइट कम कर दें। बहुत सारी लाइट्स होती हैं ना तो हम बाहर देखते हैं, लाइट कम होती है ना तो हम अंदर देखते हैं। हमें बहुत रोशनियों में ठीक है, अभी सिर्फ ये तदब्बुर है तो इसको इतना काफी, बंद कर दें, बाद में देख लेंगे। जब हम बहुत ज्यादा दुनिया की चमक तमक में रहते हैं ना तो हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक बिगड़ जाता है, और जब अल्लाह से ताल्लुक बिगड़ता है ना तो उसकी सजा क्या मिलती है कि फिर हम रब से बातें नहीं करते। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद गौर व फिक्र का तरीका कैसे होगा कि हम लफ्ज़ अलहम पे गौर करके अल्लाह से बातें करेंगे। अब इस वक्त जो बातें मैं करूँगी ना, मैं इस बात से बिल्कुल बेनियाज हूँ कि आप इस रूम में हैं कि नहीं और आप मेरी बातें सुन रहे हैं कि नहीं, और मैं चाहूँ कि आप सब भी आंखें बंद करके जो बातें मैं कर रही हूँ ना आप अपने आप से करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए रब तेरा शुक्र, ए अल्लाह मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ, ए अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम नेमतों पर जो तूने मुझे इस पिछले पूरे साल में दी, और अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि एक बार फिर तूने मुझे इस रमज़ान में कुरान पढ़ाने का मौका दिया। ए अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन सारे गमों पर जो तूने इस साल में मुझे दिए, और उन सारी खुशियों के मौसमों पर जो इस साल में तूने मुझे दिए, और अल्लाह इस पूरे साल में जो पुरसकून और ठंडी रातें गुजरी उस पर तेरा शुक्र है, जो सेहत दी उस पे तेरा शुक्र, जो बीमारी तूने दी उस पे शुक्र, और अल्लाह तेरा उस पे और भी शुक्र, वो नेमत जो तूने मुझे दी और वापस ले ली। ए अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम साथियों के लिए कि जिनकी मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें मैंने ली और जो दीन के रास्ते में मदद करने वाले हैं। ए अल्लाह तेरा कितना एहसान है मुझ पर, तूने मुझे इतनी प्यारी चीज़ें दी, इस साल में मैंने कितनी खुशबू सूंघी, कितने फूल देखे, कितने पत्ते देखे, रातों को कितने चमकते हुए सितारे देखे। ए अल्लाह मैं तेरा शुक्र करती हूँ, ए अल्लाह तब भी शुक्र था जब तन्हा थे, और वो भी शुक्र है जब दूसरे लोग साथ मिल गए। ए अल्लाह मैं तेरा उन लम्हों पे भी शुक्र करती हूँ जब मेरे आंसू गिर रहे थे किसी दुख और गम पे, लेकिन ये गम मुझे बड़ा प्यारा है क्योंकि इसने मुझे तेरी कुर्बत दी। ए अल्लाह मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ कि तूने मुझे मुसलमान बनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। ए अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने नबी के सामने शर्मसार ना करना। ए अल्लाह मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं समझ कर इस्लाम कबूल करती, अल्लाह अगर तूने मुझे उम्मत मुस्लिमा में कर ही दिया तो क्यामत के दिन नबी के सामने शर्मसार ना करना। ए अल्लाह मैं तुझसे ना खत्म होने वाली उम्मीद पे तेरा शुक्र करती हूँ, और या अल्लाह तू हौसले दे कि हम अपनी इस उम्मत की गिरती हुई नैया को संभालें। ए अल्लाह हमें ज़ाया होने से बचा ले। ए अल्लाह इस दुनिया में आज हम मुसलमानों को ऐसा बना कि लोग हमारी तारीफ किए बगैर रह ना सके। ए अल्लाह तू मुझे और मेरे तमाम साथियों को इस किताब से खैर लेने वाला बना दे। ए अल्लाह सिराते मुस्तकीम का जो रास्ता मांगती हूँ या अल्लाह इस पे चलना भी सिखा, और ए अल्लाह सिराते मुस्तकीम मांगा है, आसान रास्ता नहीं कहा, खूबसूरत रास्ता नहीं कहा, फैंसी नहीं कहा, वो रास्ता जो मुझे तुझसे जोड़ दे। ए अल्लाह तू उम्मत मुस्लिमा के अफराद के ऊपर अपना रहम कर दे, और या अल्लाह हमारी सूरत फातिहा को जिंदा कर दे, हर दिन हर रोज पढ़ते हैं लेकिन या अल्लाह हम इस पे गौर क्यों नहीं करते। ए अल्लाह मुझे इस किताब के बाद सारे हकूक को अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह ये दौरे कुरान के ही मेरी जिंदगियों में और तकब्बुर न ले आए। ए अल्लाह मुझे आजजी दे, मुझे नरमी दे, और या अल्लाह मेरे दिल में तड़प पैदा कर दे, और अल्लाह तो हमारे हाल पर रहम फरमा। एक बार फिर तिलावत सुनते हैं। आप ये कितना सोच रहे होंगे,
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.